ओम ब्रह्म सत्यम। महाराज जी की वाणी में एक दोहा आता है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए। अर्थात मनुष्य जन्म हमको इसलिए मिला है कि प्रभु का सिमरन करके हम जन्म मृत्यु से और सारे दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लें, जिसका दूसरा नाम मोक्ष है। इसीलिए हमारे भारतीय जीवन की यदि पद्धति देखी जाए, जीने का सिस्टम देखा जाए, तो प्राचीन काल से जिसको हम वैदिक काल जानते हैं, वैदिक काल करके जानते हैं, वहीं से ये परंपरा चली आई है कि मनुष्य की पढ़ाई पहले गुरुकुल में हुआ करती थी। तो गुरुकुल परंपरा में जीवन जीने के दो तरीके थे। जो विद्यार्थी भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से निकलता था तो उसको सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसीलिए संसार में कैसे जीना है उसको इस बात का पूरा पूरा बोध होता था। जिसके अंदर बचपन से ऐसे संस्कार होते थे, जिन संस्कारों के कारण वो अध्यात्म मार्ग पर चलना ही अपने जीवन की श्रेष्ठता समझता था और सांसारिक भोग विलास की कामना उसके मन में नहीं होती थी, तो ऐसे जो विद्यार्थी होते थे या ऐसे जो लोग होते थे वो सीधा सीधा संन्यास जीवन को धारण कर लेते। अर्थात गृहस्थ जीवन में ना रहते हुए केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना, ईश्वर बोध के लिए जीना और संसार के किसी बंधन में ना फंसना। यदि हम सत्पुरुषों के जीवन से देखें तो महाराज जी का जीवन इसी प्रकार का था। उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। एक वक्त उनके जीवन में ऐसा आया जब घर में खाने की भी तंगी हो गई, तब मां ने कहा, मंगत कुछ रोजगार की सोचो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो महाराज जी के मन में एक संकल्प मात्र आया, उनके जो बहनोई थे उनके घर जब वो कलर गए तो वहां पर एक साधारण सी, जिसमें आयुर्वेद के नुस्खे लिखे हुए थे, वो किताब उनको वहां पढ़ने को मिली। तो कुछ दवाइयां उसमें से उन्होंने नोट कर ली जो हाथ से बना सकते थे, जड़ी बूटियों से बना सकते थे। फिर घर आकर उन दवाइयों को तैयार किया, कुछ बीमारों को वो दवा का सेवन करवाया, वो ठीक होने लगे। इस प्रकार से एक साधारण सा सिलसिला चालू हो गया कि मरीजों के लिए दवा तैयार करना और उनका रोग दूर करना। कुछ प्रभु की कृपा वो सिलसिला चालू हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी से पैसा नहीं मांगते थे, ना लोगों के पास पैसा उस समय हुआ करता था। कोई अनाज रख जाता था, कोई अन्य कोई वस्तु रख जाता था, कोई पैसे भी रख जाता था। तो उसके पश्चात जब मां का देहांत हो गया, बल्कि देहांत से पहले ही मां ने जब देखा कि कुछ पैसे की कमाई होने लगी है और मरीज भी ठीक होने लगे हैं, तब महाराज जी के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि बेटा शादी कर ले। कई बार उन्होंने जब कहा तो महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि इनका प्रोग्राम शादी करके घर में रहना नहीं है, इनका जीवन किसी दूसरे उद्देश्य के लिए मिला है और उसी काम को ये करेंगे। आइंदा से फिर ये प्रस्ताव मेरे आगे मत रखना। खैर बात खत्म हो गई, मां का देहांत हो गया। मां के देहांत के पश्चात फिर जैसा हम जानते हैं उन्होंने सारा जीवन लोक कल्याण के लिए, लोगों का ईश्वर मार्ग में चलने के लिए जो मार्गदर्शन था वो मार्गदर्शन किया। और ये वाणी जो आप सुन रहे थे, ये वाणी उनके मुखारविंद से प्रकट हुई और समता विलास ग्रंथ जो प्रोज में है वो भी महाराज जी के हाथ से लिखा गया। इस प्रकार ये सिलसिला चालू। तो उनका सारा का सारा जीवन जो है इसको सन्यासी जीवन कहा जाता है। इसी प्रकार महर्षि रमण का भी जीवन है जो दक्षिण में हुए, उनका भी इसी प्रकार का जीवन था। तो ये प्राचीन परंपरा चली आई है भारत में कि यदि ईश्वर भक्ति भी करनी है तो वो भी लोगों ने या गृहस्थ में रहकर की है, जैसे गुरु नानक गृहस्थी थे, तो राम गृहस्थी थे, कृष्ण गृहस्थी थे, तो बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े सदगुरु गृहस्थ में भी हुए हैं और सन्यासी जीवन में भी हुए। तो यह परंपरा प्राचीन काल से है। तो चाहे हम गृहस्थ में रहें चाहे सन्यास जीवन व्यतीत करें, लेकिन जीने का जो उद्देश्य है वो एक ही है, जिसके बारे में वाणी कह रही है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए। ये मानव जन्म को दुर्लभ जन्म कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? अरे दुर्लभ जन्म है इसका मतलब कोई दुर्लभ कर्म करने के लिए मैं इस संसार में आया हूं, ये मानव देह धारण करके। तो वो दुर्लभ कर्म कौन सा है? शादी आम लोग करते हैं, सर्विस बिजनेस आम लोग करते हैं, पैसा कमाते हैं और घर में भोग विलास का सामान इकट्ठा करते हैं, ये तो आम जीवन है। तो ये दुर्लभ जीवन का है। तो इसका मतलब मैंने मानव जन्म लेकर इस बात को सीखना है कि किस कारण से मेरे इस मानव जन्म को दुर्लभ जन्म कहा जा रहा है। ये वाणी कह रही है, वाणी कोई मनुष्य की राइटिंग नहीं है, वाणी सीधी ईश्वर की आवाज है। जिस समय यह आवाज प्रकट होती थी तो मां जी खुद कहते थे कि इनको भी पता नहीं कि प्रभु क्या बुलवा रहा है। इसीलिए जब ये वाणी का करेक्शन होता था तो भगत जी से कहते थे, प्रेमी जरा पढ़ो ईश्वर की क्या महिमा प्रकट है। इसलिए जब वो पढ़ते थे तब जो शब्द छूट जाते थे, जो गलतियां रह जाती थी, तो महाराज जी उसका करेक्शन करवाते थे। उस करेक्शन करने में उनको टाइम लग जाता था। तो इसका मतलब हुआ कि ये मनुष्य की बुद्धि से प्रकट नहीं हुई है। बुद्धि के ऊपर जो सत्ता मौजूद है इस देह के अंदर, उस सत्ता से यह वाणी प्रकट हुई। इसलिए आप वाणी भी सुन रहे थे, उसमें एक पंक्ति आ रही थी, जन्म से पहले जो साथ रहा ही, जन्म के पहले जो साथ रहा ही, अंत समय जो होए सहाय। अब देखिए कि जिस समय मेरी इस देह की मृत्यु होती है उस समय भी ईश्वर मेरा संग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं उस ईश्वर को इस शरीर के जिंदा रहते भूला ही रहता हूं। आम व्यक्ति ईश्वर को कहां याद करता है? यदि किसी के अंदर निश्चय भी है तो पक्का निश्चय नहीं होता। जैसे कि हमें, हमारे पर कोई मुसीबत आ जाती है जब, और जब हम सारे जो साधन है वो अपना लेते हैं, जब हमारी कोई होशियारी नहीं चलती तब प्रभु के नजदीक जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वहां मन्नत मांगते हैं कि प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता, मजबूरी में उसके पास जाते हैं। जब मेरी सारी सामर्थ्य फेल हो जाती है, पैसा भी काम नहीं करता, मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मेरे जो सांसारिक साधन है वो भी काम नहीं करते, तब मेरी डिपेंडेंस जो है वो ईश्वर पर बनती है। लेकिन यदि आपका काम हो भी जाए तब भी आप ईश्वर को याद नहीं करते, ईश्वर के लिए नहीं जीते, आप जीते हो केवल सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए। उसमें जब बाधाएं आती हैं तो सांसारिक तरीके से पहले हल करते हो, जब नहीं होती हैं तब ईश्वर को याद करते हो। तो ईश्वर के प्रति आपके अंदर निश्चय नहीं है, क्योंकि ईश्वर का विज्ञान आपने कभी सीखा ही नहीं। ईश्वर का तो छोड़ो, अपने बारे में भी, अपना विज्ञान भी कभी नहीं सीखा मैंने। यदि मैंने सीखा तो क्या सीखा, कि मेरी देह के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उसकी थोड़ी केमिस्ट्री सीख ली, थोड़ी उसकी फिजिक्स सीख ली, तो जो मैकेनिकल लाइफ है देह की वो मैं सीख लेता। लेकिन देह के अंदर ईश्वर खुद विद्यमान है, वो जीवन शक्ति जिसको हम जान कहते हैं, वो इस देह के अंदर उसका स्थायी निवास है। इसीलिए ये वाणी आपको याद दिला रही है कि जब इस देह का जन्म हुआ, अर्थात मुझको इस देह के अंदर रहने को दिया गया, तो इस जन्म से पहले भी ईश्वर मेरे संग था। अर्थात पूर्व जन्म में जब मेरी देह की मृत्यु हुई थी, उस समय भी ईश्वर ने मेरा संग छोड़ा नहीं था। इसलिए मृत्यु का जो विज्ञान है वो उपनिषद में बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि जिस समय इस देह की मृत्यु होती है, उस समय ये जो इंद्रियां हैं जिसको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, आंख देखने की इंद्रिय है, नासिका सूंघने की इंद्रिय है, त्वचा सर्दी गर्मी सख्त मुलायम एहसास करने की इंद्रिय है, कान हमारी सुनने की इंद्रिय है, और जो जिह्वा है ये स्वाद इंद्रिय। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां इस देह के अंदर काम कर रही हैं, परंतु ये सूक्ष्म है। और अध्यात्म में सूक्ष्म उसको कहा जाता है, देह को यदि जला दिया जाए तब जिसकी जो चीज नष्ट ना हो उसको सूक्ष्म कहते हैं। इस देह को नष्ट कर दिया जाए तब भी वो नष्ट ना हो, जो चीज बच रहा है उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो ये इंद्रियां सूक्ष्म है, इसीलिए जिस समय इस देह की मृत्यु होती है, उस मृत्यु के समय सबसे पहले ये इंद्रियां मन के अंदर प्रवेश कर जाती है, और उस समय मेरी वही स्थिति होती है जैसे कि सोते समय होती है। जब मैं सोता हूं तो सबसे पहले मेरी कच्ची नींद होती है, अर्थात उस हालत में ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये मन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन मन मेरा एक्टिव रहता है, क्योंकि इंद्रियां जो है मन के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं, इसीलिए देह का अनुभव मुझको उस समय नहीं रहता, उसको मैं निद्रा अवस्था कहता हूं। लेकिन मेरा अपना अनुभव बताता है कि उस कच्ची नींद में मेरे अंदर स्वप्न की रचना होती है, उस स्वप्न का अनुभव मैं करता हूं, और यही मेरी इंद्रियां स्वप्न में कार्य करती है, क्योंकि वहां मुझे गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, वहां मैं खाता भी हूं, सुनता भी हूं, देखता भी हूं, सब कुछ करता हूं। तो वो स्वप्न की रचना सिद्ध कर रही है, ये जो तेरी इंद्रियां हैं ये केवल इसी देह में काम नहीं करती हैं, दूसरी देह में भी काम करती हैं, और स्वप्न की जो देह है वो इस बात का प्रमाण है। महर्षि रमण कहते थे कि तू पुनर्जन्म को कभी मानता है कभी नहीं मानता, तू कंफ्यूजन में रहता है, लेकिन तेरा जो स्वप्न है इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए तुझको, पुनर्जन्म का इससे बड़ा प्रमाण तुझे क्या चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि दूसरी देह में मैं ऐसे ही जीऊं जैसे इस देह में जी रहा हूं, इसका मतलब वो पुनर्जन्म। कोई सत्पुरुष हो तो अभी आपको बता देगा कि तुम पूर्व जन्म में किस देह में थे, कहां रहते थे, क्या करते थे, सब बता देगा। और मेरी जो जन्म पत्री है जो जन्म से ही मेरे साथ बंध जाती है, यदि अच्छा ज्योतिष हो तो वो भी बता देगा आपको कि तेरे जन्म में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या दुख आने वाले हैं, क्या क्या सुख आने वाले हैं, क्या क्या तेरे काम बनने वाले हैं, क्या क्या बिगड़ने वाले हैं। ये जन्म पत्री कहां से फिक्स हो गए, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो पूर्व जन्मों में जो कुछ भी तूने कर्म किए जिनका फल तू वहां नहीं भोग पाया, तो वो कर्म का एक अंश तुझको इस जन्म में भोगना पड़ता है। जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो जो जन्म पत्री के रूप में, ग्रहों के रूप में हमारे साथ बांध दिया जाता है, उसमें कोई कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। सारे ऋषि इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रम। जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। सारे सारे ऋषि एक ही बात तो कह रहे, लेकिन मैं इतना चालाक हूं, इतना होशियार अपने आप को समझता हूं कि मैं हर चीज की काट निकाल लेता हूं। काट निकलती नहीं है, कंफ्यूज रहता हूं। इसीलिए ज्योतिष के पास जाता हूं, पंडित के पास जाता हूं, मुल्ला के पास जाता हूं कि मेरा भाग्य ये बदल देगा, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे मेरे, अच्छे दिन ये ला देगा, उस पर मेरा निश्चय रहता है। मैं गुरु पर निश्चय नहीं करता, इन शास्त्रों पर निश्चय नहीं करता। तो ये अटल सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए महाराज जी ने समता विलास में भी लिख दिया, गुरु पीर नवी पैगंबर अवतार। देखिए, जिस गुरु पर हम विश्वास करते हैं, जिसको हमने अपना गाइड बनाया है, जिसको गुरु रूप में हमने जीवन में धारण किया है, उसका वचन तो पढ़े पहले। हम समता विलास में क्या लिखा हुआ है, गुरु पीर नवी पैगंबर अवतार, सबको अपनी करनी का फल मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब बताइए, ये अवतार भी प्रारब्ध के वशीभूत है, गुरु भी, गुरु की देह भी प्रारब्ध के वशीभूत है, लेकिन मुझ में और गुरु में अंतर क्या है? मैं अपने आप को देह करके समझ रहा हूं, और कर्म क्योंकि देह से हो रहे हैं, और कर्म का जो फल है सुख रूप या दुख रूप, उसका असर देह पर पड़ रहा है। मैं जब देह समझ रहा हूं तो वो सारा सुख और दुख क्या हो गया, मेरा हो गया। लेकिन गुरु क्या है, गुरु में मुझ में क्या अंतर है? गुरु को एक सेकंड भी ये भाव नहीं आता कि मैं देह हूं, वो तीन काल इस देह से अलग है, अर्थात देह का दृष्टा बना हुआ है। इसीलिए संसार में कुछ भी घटनाक्रम क्यों ना बदल जाए, देह पे बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना जाए, गुरु के मन को वो लेश मात्र भी हिला नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से देह से अलग होकर आत्मा में स्थित है, उस जीवन सत्ता में स्थित है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसके कारण इस देह का संचालन हो रहा है, जिसके कारण ये देह जो है वो जीवित हमको नजर आ रही है। तो इसीलिए मनुष्य की जितनी भी मुसीबतें हैं वो उसकी अपनी ही इंद्रिय भोगों के कारण है। और इंद्रिय भोग ये मनुष्य क्यों करता है? क्योंकि इसके मन के अंदर विभिन्न प्रकार की वासनाएं, विभिन्न प्रकार के संकल्प, विभिन्न प्रकार की कामनाएं निरंतर उठती रहती हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे यदि खड़े हो जाइए तो तरंग निरंतर वहां एक के पीछे दूसरी उठती ही रहती है। आप 24 घंटे खड़े रहिए, आप एक सेकंड भी ऐसा नहीं पाएंगे कि तरंग का उठना वहां बंद हो जाए। तो मेरे ही मन की ये स्थिति है, और हर वासना की तरंग, हर जो है डिजायर मेरी मुझको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि डिजायर तो कर्म के द्वारा ही पूरी होगी, और कर्म जानते हैं कि कितना बड़ा बंधन है। उसके लिए मुझे लोग भी चाहिए, उसको मुझे, उसके लिए मुझे संसार भी चाहिए, क्योंकि सामग्री चाहिए इच्छा पूर्ति के लिए। तो मैं लोगों की गुलामी करता हूं, इस प्रकृति की गुलामी करता हूं अपनी डिजायर पूरी करने के लिए, और डिजायर उठ कहां रही है? वो मेरे ही मन के अंदर उठ रही है। तो अब बताइए, जिस समय इस देह की मृत्यु होती है उस समय मेरी ही ज्ञान इंद्रियां मेरे ही मन के अंदर प्रवेश कर जाती है, मन के अंदर लीन हो जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है। इस देह को जलाने से मन नहीं चलता, तो मन जो है योग विद्या के अनुसार मन प्राण के अंदर प्रवेश कर जाता है। और कई बार ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया होगा, कभी ऐसे सीन हमारे सामने आ जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो ना उसको अपनी देह का होश है, ना संसार का होश है, उसके अंदर कोई व्यथा भी नहीं, कोई बेचैनी भी नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? श्वास उसकी चल रही है परंतु मन भी उसका शांत है, इंद्रियां भी उसकी शांत है, अर्थात इंद्रियां मन में प्रवेश कर चुकी हैं, मन प्राण में प्रवेश कर चुका है, श्वास चल रही है। जब तक श्वास चलती है हमें पता है मृत्यु उसकी नहीं हुई है, ये उसकी वैसी ही स्थिति है जैसे कि मेरी गहरी निद्रा की अवस्था होती है। गहरी निद्रा में क्या होता है? मुझको कोई स्वप्न का अनुभव नहीं होता, ना मुझे देह का होश है, ना मुझे संसार का होश है, ना मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं, ना मेरे अंदर कोई बेचैनी। इसको सुषुप्ति कहते हैं, गहरी निद्रा कहते हैं, लेकिन मेरी देह जीवित है। तो ये जो सुषुप्ति की हालत है, ये मौत के वक्त भी ऐसी ही होती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मेरी नींद टूटती है और मैं जागृत हालत में आ जाता हूं। लेकिन मौत के वक्त क्या होता है? वहां क्या अंतर हो गया? ये जो प्राण है जिसके अंदर मन प्रवेश कर चुका है, जिसके अंदर इंद्रियां प्रवेश कर चुकी हैं, ये प्राण उस जीवन शक्ति में प्रवेश कर जाता है जिसको योग विद्या में कुंडलनी कहा जाता है, जिसको महाराज जी नाद भी कह रहे हैं। तो ये इस देह के अंदर वो शक्ति है जिसको उपनिषद में महाप्राण कहा गया है। महाप्राण क्यों कहा गया? क्योंकि जिसमें से ये प्राण उदय होता हो, जिसमें से मेरी श्वास पैदा होती हो, उसको महाप्राण कहते हैं। तो मृत्यु के वक्त मेरे ही प्राण, जिस पर मेरा ये जीवन आधारित है, ये प्राण भी छूट जाते हैं, ये महाप्राण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उस समय जो वैद्य लोग हैं वो जानते हैं इस बात के लिए कि अभी भी इसकी मृत्यु नहीं हुई है। हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, दिल का धड़कना बंद हो गया, श्वास इसको आने रही है, लेकिन जो वैद्य हैं वो जानते हैं, वो देखते हैं कि इसके शरीर में गर्मी कहाँ है। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर छूकर देखें तो पैर के अंगूठे से लेकर धीरे 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 उसकी गर्मी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है और नीचे से शरीर ठंडा होता चला जाता है। तो ये जो महाप्राण है ये धीरे धीरे उसके देह का त्याग कर रहा है और आपकी श्वास, आपका मन, आपकी इंद्रियां उस महाप्राण के अंदर सुरक्षित हैं, वो नष्ट नहीं हुई है। तो जब ये महाप्राण आपके मस्तक पे जाकर केंद्रित होता है उस समय सारा शरीर नीचे से ठंडा है, लेकिन अभी भी उसकी मृत्यु नहीं हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार अर्थी ले जाते हैं, वहां भी कई बार मनुष्य जी उठता है, कई बार घर में ही उसका शरीर पड़ा हुआ है वहां भी वो जी उठता है, कई बार आधे घंटे के बाद, कभी पौन घंटे के बाद, कभी घंटे के बाद, वहां कोई टाइम फैक्टर नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महाप्राण के अंदर वो जीव पूरी तरह से सुरक्षित है, ईश्वर के हाथों में, ईश्वर की गोद में वो सुरक्षित है। तो इसीलिए जब ये मस्तक को भी ये महाप्राण छोड़ता है उस समय इस देह का ये त्याग कर देता है, लेकिन जीव पूरी तरह से वहां भी सुरक्षित है। इसी की याद ये वाणी दिला रही है। वाणी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कहानी किससे कह रही है आपसे, वो रियलिटी बयान करते हैं, लेकिन हमको उसका विज्ञान का पता नहीं होता, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं सारी जिंदगी। इसलिए वाणी याद दिला रही है आपको कि जन्म के पहले जो साथ रहाई, अंत समय जो होए सहाय। ये अंत समय, ये ईश्वर इस प्रकार मेरा सहायक होता है। अब बताइए, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, सब कुछ उस ईश्वर में ही सुरक्षित है। ईश्वर ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जो कुछ भी मैंने इस जन्म में कमाई की थी वो सारा ईश्वर ने सुरक्षित रखकर ये सारा का सारा मुझको नई देह में वो प्रदान कर देता है। मेरा वही मन, मेरी वही इंद्रियां वो मुझको नई देह में प्रदान कर देता है। लेकिन एक बंधन वहां मुझको भोगने को मिलता है, जिस बंधन को मैं तोड़ नहीं सकता, प्रारब्ध का बंधन, कि जो कुछ भी मैंने कर्म किए हैं, जैसा मैंने स्वभाव तैयार किया है, वो वैसा ही मेरा मन बचपन से ही मिलेगा। इसलिए घर के अंदर जब बालक पैदा होता है तो आप देखते हैं कि एक बालक आपका ही बालक है, माता पिता वही है उसके। एक बालक बड़ा शांत स्वभाव का होता है, एक बालक बड़ा शैतान प्रकृति का होता है। एक बालक माता पिता की सेवा करता है, एक बालक माता पिता को दुख देता है। ये एक ही घर में, एक ही माता पिता के संतानों में अंतर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है हमेशा ही ऐसा होता है, दोनों भी अच्छे हो सकते हैं, दोनों या दोनों भी बिगड़े हो सकते हैं। देखिए स्वभाव हर बालक लेकर पैदा होता है और वो स्वभाव पूरे जन्म उसके ऊपर छाया रहता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं प्रेमी, मनुष्य यदि कोशिश करे तो इस स्वभाव को वो बदल भी सकता है। तो अब बताइए, मनुष्य जन्म में मैंने ये विज्ञान सीखना था, क्योंकि सुख दुख पुण्य पाप स्वभाव के वशीभूत होकर जीव भोगता है, स्वभाव के वशीभूत होकर यह कर्म करता है। इसीलिए यदि मैंने इस विज्ञान को नहीं सीखा तो फिर ये जन्म तो मेरा बर्बाद हो गया, और किसी स्कूल में यह बात पढ़ाई नहीं आती, किसी स्कूल में यह विद्या आज के दिन नहीं पढ़ाई जाती। पहले तो परंपरा थी, गुरुकुल में यह शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब आध्यात्मिक विद्या कहां पढ़ाई जाती है? मैंने कहां सीखी है ये बातें? तो बताइए कि पूरा का पूरा जन्म मेरा बर्बाद हो जाता है। बड़ी बड़ी मैं डिग्रियां हासिल कर लेता हूं, बड़े बड़े मैं बड़ी हाई पोस्ट में जीवन में धारण कर लेता हूं, बड़े बड़े बिजनेस कर लेता हूं, लेकिन मुझको होश ही नहीं होता कि मेरा कंप्लीट जीवन कंप्लीट फेलियर है, मुझको ये पता ही नहीं लगता। इसलिए वाणी आपको याद दिला रही है, तू कितना भी बड़ा क्यों ना बन जा, लेकिन तू दुख से मुक्त नहीं हो सकता। सांसारिक जीवन व्यतीत करके तू दुखों से, चिंता से, भय से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए वाणी याद दिला रही है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया जिस शोभा पाई करता। जिसने उस ईश्वर के रहस्य को जाना मनुष्य जन्म लेकर, वही जानता है कि जीवन में सुख क्या होता है। उस सुख का नाम शांति है, उस सुख का नाम आनंद है जो इंद्रिय भोगों से ऊपर है। अब बताइए कि मैंने अपने बच्चे भी इसी लिए तैयार किए, उनको वही डायरेक्शन जीने की सिखाई कि भाई अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन अटेंड करो, अच्छी से अच्छी कमाई करो और सुखी जीवन व्यतीत करो। लेकिन मैं ये भूल गया कि संसार में जो मनुष्य आया है, जो केवल संसारी है, इसको ईश्वर विज्ञान का बोध नहीं है, अपने विज्ञान का बोध नहीं है, वो सुखी कभी हो ही नहीं सकता। ये सत्पुरुषों ने, सारे सत्पुरुषों ने ये लिखकर गारंटी दी है कि वो इंसान कभी धरती पर रहकर सुखी हो ही नहीं सकता। ऐसा इंसान पूरी धरती पर आज तक एक भी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए वैदिक काल से लेकर, विचार तो करिए जरा, कितना प्राचीन काल है। हम तो सोचते हैं शायद पत्थर युग होगा, उस समय के लोग कुछ जानते ही नहीं होंगे, लेकिन वैदिक काल का ऋषि लिख रहा है कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, सब कुछ दुख ही है, अर्थात तू कुछ भी क्यों ना कर ले तो मानसिक बेचैनी से मुक्त नहीं हो सकता। इस मानसिक बेचैनी को ही सत्पुरुष दुख कहते हैं। मेरी तिजोरी में यदि 10 अरब की संपत्ति भी रखी हुई है, मेरे मन में चैन नहीं है, तो उस वो पैसा क्या सुख का साधन है मेरे लिए? मानसिक मेरी बेचैनी बनी हुई है तो काय का सुख। तो इसलिए याद दिला रहा है उपनिषद आपको कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। इसलिए फिर जीने का मेथड क्या, वो जीने का कौन सा रास्ता सिखा रहा है उपनिषद? काम भोगान निवर्तयेत। तो जीने का रास्ता क्या बता रहा है? कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, यह है वे ऑफ लाइफ। अब जरा हम सोच लें कि मेरी वे ऑफ लाइफ क्या है, मैंने बच्चों को कौन सी वे ऑफ लाइफ सिखाई है, क्या स्वप्न देखे हैं, और ये उपनिषद क्या कह रहा है, ये ऋषि क्या कह रहा है, और महाराज जी आज के युग में यही बात कह रहे हैं कि मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। मैं नहीं जानता कि मैं किन दुखों में, किन चिंताओं में, किस भय में फंसा हुआ, बड़ा विकास किया हो मैंने, बड़ी ऊंची डिग्री लियो, बड़े पैसे कमाए हो मैंने, लेकिन एक रात नहीं बीतती सारा दुख में बदल जाता है। रात तो छोड़ो, एक घंटा भी नहीं बीतता, सारा दृश्य बदलने में एक मिनट नहीं लगता। तेरे 20 साल के सुख, 20 साल का पुरुषार्थ एक मिनट के अंदर तहस नहस हो जाता है, ऐसी तेरी रचना है। इतने टेम्परेरी सुख के पीछे मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं अपनी, मुझे होश ही नहीं है। इसीलिए प्रभु कृपा करते हैं, वो अवतार रूप में, गुरु रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। ये वाणी, ये प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, ये ग्रेस है, केवल मेरे ऊपर नहीं पूरे संसार के ऊपर प्रभु की ये ग्रेस है। इस ग्रेस को मैं नहीं समझता, मेरा स्वार्थ कोई पूरा कर दे, कहीं कोई महामंत्र का जाप करके पूरा कर सोचता है मेरा पूरा हो गया, कोई मंदिर में दर्शन करके समझता है मेरा पूरा हो गया, कोई देवी का व्रत करके समझता है मेरा पूरा हो गया। यदि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाता है तब तो मुझे ईश्वर की याद आती है, लेकिन स्वार्थ पूरा ना हो मैं जानता ही नहीं कि ईश्वर की याद करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। जो स्वार्थ बंधन है, मैं ईश्वर की याद उस बंधन के लिए कर रहा हूं, मैंने कुछ सीखा ही नहीं। तो गुरु आपको सिखाता है, ये गुरु सिखाता है कि ईश्वर की याद वासना पूर्ति के लिए नहीं की जाती है, वासना निवृत्ति के लिए की जाती है। और मैं कैसा गुरु का मिसयूज कर रहा, मुझे होश ही नहीं। बड़ी बड़ी संगतें, लाखों करोड़ों की संगतें गुरु भक्ति का यही स्वरूप समझती है, इसीलिए वहां पाखंड जारी हो जाता है। गुरु कहता है तुम मेरे भोग पूरे करो, मैं तुम्हारे भोग पूरे करूंगा। और हम रात दिन टीवी में, पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे युग में, वैज्ञानिक युग में इतने बड़े पाखंड कि लाखों करोड़ लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, नकली गुरुओं के चक्कर में। और असली गुरु का दरबार देखो तो वहां उंगलियों पर गिनने लायक लोग मिलेंगे आप। महाजी तो ऐसे ऋषि हुए जिनके द्वारा वाणी भी प्रकट हुई, और महाजी के शिष्य कितने थे? 1000 से भी कम। तो जो अवतार है, जो हजारों वर्ष संसार को का मार्गदर्शन करता है अपने जीवन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, उसके शिष्यों की संख्या 1000 से भी कम। और जो ठग विद्या वाले जो गुरु हैं संसार में, उनके शिष्यों की संख्या लाखों करोड़। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैं ही मूर्ख हूं। तो मूर्ख व्यक्ति को तो मूर्ख ही गुरु मिलेगा और क्या मिलेगा। मैं ही स्वार्थी हूं, मैं स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु धारण करता हूं, तो डूबोने वाले ही गुरु मिलेंगे मुझे। इसीलिए बड़े भाग्य से ऐसा सत्संग मिलता है जहां ऋषियों की मूल वाणी, ऋषियों के मूल वचन सुनने समझने का मौका मिले। इसलिए गृहस्थ में इससे बड़ा सत्कर्म और नहीं हो सकता कि इस प्रकार का सत्संग सुनने को मिले इस आयोजन के द्वारा। यही वो शिक्षा है जो मेरे गृहस्थ जीवन में चार चांद लगाएगी, यही वो शिक्षा है। मैं इसे डरता हूं, डरता इसलिए हूं कि मैं इस मार्ग पे चला तो मुझे कम कमाई करनी पड़ेगी, मुझको कमाई में से वक्त बचाना पड़ेगा, कुछ सिमरन में लगाना पड़ेगा, कुछ भोग विलास मुझे कम इकट्ठे करने पड़ेंगे, सुखों में मेरे कमी आ जाएगी। मैं इस प्रकार से देखा करता हूं, मुझे कहां समझ है। इसीलिए ऋषियों ने बड़ी मेहनत की है, पूरा जीवन लगाया है इस अध्यात्म विद्या को सरल रूप से समझाने में, सरल रूप से लिखने में भी। लेकिन फिर भी कितना भी सरल करके लिख दिया जाए इसको, लेकिन वो कठिन ही रहती है। लेकिन सारी की सारी कठिन नहीं होती, वो सारी की सारी कठिन नहीं होती। जहां हम खड़े हैं वहां से यदि समझें उसको, वहां से आगे चलने की कोशिश करें तो वो कठिन नहीं होती। आप बताइए महाराज जी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? वो कहते प्रेमी सबसे पहले सादा जीवन अपनाओ। अब बताइए कोई कहे कि सादा जीवन अपनाना तो बड़ा कठिन है, तो विचार करके देखो जरा, फैशन करना कठिन है या सादे कपड़े धारण करना, खरीदना, मेंटेन करना कठिन है? जरा विचार करके तो देखो, कठिनाई तो फैशन में, रात दिन सोचते ही रहो, आ ये डिजाइन, कल को वो डिजाइन, परसों को वो डिजाइन, फिर दूसरों को भी देखते रहो, तो पूरी जवानी आपकी दूसरों को देख देख के और फैशन कर करके खत्म हो जाएगी आपकी। तो कितनी बेचैनी एक आइटम के द्वारा हो रही है, फैशन के द्वारा, शरीर को सजाने के लिए कितनी बेचैनी तू धारण कर रहा है। और यदि तेरे अंदर ये अध्यात्म विद्या आ जाए, ये बात समझ में आ जाए, तो कितनी बड़ी मुसीबत से बच गया तू, कितने बड़े खर्चे से बच गया तू। याद रखिए, चाहे कैसा भी जमाना आ गया हो, आज भी लोग उसी को पसंद करते हैं जिसका सादा जीवन होता है। याद रखिए, आज भी आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाइए, वहां पर भी वो फैशनेबल कपड़े पसंद नहीं करते। याद रखिए, कोई भी बॉस फैशनेबल कपड़े पसंद आज भी कॉर्पोरेट ऑफिस में पसंद नहीं करता। सॉबर कपड़े होने चाहिए, उसमें डिसेंसी होनी चाहिए, यहां तक कि जींस तक अलाउ नहीं करते वो ऑफिस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गरिमा उन कपड़ों से नहीं है जिसको फैशन, जो फैशनेबल कपड़े कहते हैं, हमारी गरिमा उस सिंप्लिसिटी में। इसका मतलब गंदगी नहीं, सफाई। जो देश चाल की जरूरत है, देश काल की जो जरूरत है, उसके हिसाब से कपड़े पहनो। तो खाने में सादगी, पहनने में सादगी, बातचीत में सादगी। कैसी बना बना के मैं बातें करता हूं, मेरी ओरिजिनल भाषा तक नहीं रहती। तो जैसा मन में है वैसा विचार करना, चालाकी की जरूरत ही कोई नहीं। तेरे अंदर यदि ईश्वर विश्वास है तब तू किसी से क्यों डरेगा? तेरा जीवन यदि प्रारब्ध के अधीन है, इसका मतलब ईश्वर के अधीन है। दुनिया की कोई ताकत ना तुझको दे सकती है, ना तुझे छीन सकती है। तेरे भाग में यदि, तेरे प्रारब्ध में यदि लिखा हुआ है, तो तेरे पास, तेरे ऊपर दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। बिना गलती के लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, गलती एक करता है, जिसने गलती नहीं की है वो भी मारा जाता है। तो वो प्रारब्ध चक्र है। तो इसीलिए जिसने इस विज्ञान को समझा है वो जानता है कि इस देह की रक्षा अंतर्यामी ईश्वर ही कर रहा है। और जब तक मेरा प्रारब्ध है, अर्थात जब तक इस देह की आयु लिखी हुई है, इसको कोई मार नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत होकर वो, निडर होकर संसार में जीवन जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सावधानी छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन उसके अंदर एक जो अनजाना भय होता है वो नहीं रहता। लेकिन ये तभी कायम रहेगा जब आप ईश्वर के लिए जी रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि वो ईश्वर सत्ता हर वक्त मेरी देह के अंदर स्थित है और मेरे संग है। मैं खुद भी इस देह के अंदर ही स्थित हूं और बंधन संसार में नहीं है, बंधन मुझको अपने ही मन का है, अपनी ही इंद्रियों का है। मेरा बंधन मेरे ही कारण से है, और कोई बंधन नहीं। इसीलिए मनुष्य जन्म इस मन के बंधन से मुक्त होने के लिए मुझको दिया गया है। और मन के बंधन से मुक्त होने का रास्ता क्या है कि अंतर्यामी जो ईश्वर है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर आनंद है, जो आनंद का सागर है और मन अशांति का सागर है, तो इस अशांति के सागर से यदि मैंने मुक्त होना है तो उस आनंद के सागर अर्थात ईश्वर को मुझको इस देह के अंदर जानना ही होगा। उस ईश्वर को जानने का नाम ही ईश्वर भक्ति है। अब बताइए, मैं संसार में बेचैनी लेकर जी रहा हूं, भय लेकर जी रहा हूं, हजारों प्रकार की इच्छाएं लेकर जी रहा हूं, और मेरे जीवन का आज तक एक साल भी ऐसा नहीं बीता जिसको मैं दावे से कह सकूं मैं निश्चिंत होकर एक साल तक जिया था। ऐसा तेरे जीवन ना कभी आया ना कभी आएगा, कभी आ ही नहीं सकता। कंपेरेटिव दृष्टि से कह सकते हो आप कि एक साल बड़ा दुखदाई था, उसकी तुलना में एक साल मेरा बड़ा सुखदाई था। ये कंपेरेटिव टर्म है। अपने आप में कोई साल मनुष्य का चैन से नहीं बीतता। तो चैन उस ईश्वरीय सत्ता में है जिसको जिसका अनुभव ये जीव महाप्राण के रूप में इस देह के अंदर करता है। उस महाप्राण का नाम ही नाद है, उस महाप्राण का नाम ही कुंडलनी है, और उसका बोध गुरु कृपा से ही होता है। और गुरु कृपा किसको मिलती है? जो गुरु की आज्ञा पालन करके गुरु मंत्र का जाप करता है, और गुरु की आज्ञा पालन करके इस वाणी में जो परहेज बताया गया है, जिस प्रकार मुझको गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए कहा गया है, सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा गया है, प्योरिटी के साथ, संयम के साथ, मर्यादा के साथ, तो मेरी बुद्धि हमेशा होश में रहती है, मदहोश नहीं होती, पैसे का नशा नहीं होता, अहंकार का नशा नहीं होता, मैं बड़ा आदमी हूं, बड़ा काबिल आदमी हूं, मेरे अधीन हजार लोग काम करते हैं, उसके अंदर नशा नहीं होता है, उसके अंदर निर्माणता होती है, उसके अंदर मानवता होती है, उसके अंदर ईमानदारी होती है, वो अपने फर्ज को समझता है। जिस कार्य करने के लिए पैसे लेता है वो कार्य करता है, वो मालूम है मैंने पैसे काम करने के लिए ले रहा हूं, धोखा नहीं देता वो मालिक को या सरकार को, क्योंकि वो जानता है कि देखने वाला आदमी नहीं है, देखने वाला ईश्वर है, वो मेरे अंदर है, और कौन देखेगा मुझको। इसीलिए जीवन में गुरु धारण करना, इसका मतलब मैंने नाम रूप को गुरु नहीं बनाया है, वो जो ईश्वर अंतर्यामी है वो बाहर संसार में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि अंदर ईश्वर है लेकिन मैं उसकी आवाज नहीं सुनता, वो मुझसे क्या कह रहा है मैं नहीं जानता, तो इसलिए वो गुरु रूप में संसार में आता है और ये ज्ञान प्रकट करता है, अपना जीवन जीकर दिखाता है। सारा ज्ञान जो उसने प्रकट किया है वो अपने जीवन में अमल करके वो दिखाता है कि ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। और जिस प्रकार मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हूं, हर प्रकार की वासना से मुक्त हूं, शरीर की मृत्यु भी मेरे शांति को भंग नहीं कर सकती, तो ये शांति तुझको भी मिल सकती है, इस शरीर के रहते रहते मिल सकती है, यदि तू मुझको गुरु बनाकर मेरे हिसाब से चलने की कोशिश कर। तो ऐसा जो गुरु है वो आपको कह रहा है कि मानुष्य जन्म सफल होवे, जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए, मेरे चित्त में प्रभु बस जाए, हर पल मुझे ध्यान रहे मैंने प्रभु प्राप्ति के लिए जीना, बाकी सब ये काम चलाने वाली बातें हैं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसका बंधन क्या है मैं समझता हूं अच्छी तरह से, तो ये पूरी साइंस है, पूरा विज्ञान है, इसको कितनी गहराई से हमको पढ़ना चाहिए, कितनी गहराई से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें लापरवाही करने की जरूरत नहीं। अपने जीवन कल्याण के लिए मैं अपनी विद्या जानता ही नहीं, उसको सीखने की मेरे अंदर उमंग ही नहीं। पैसा कमाई की विद्या मैंने कितनी सीखी है, 25-25 साल लगा दिए उसके अंदर। तो इस शिक्षा के प्रति, गुरु के प्रति मुझको गंभीर होना चाहिए। गंभीर होकर इसकी, इसका जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के अनुसार मुझे जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि जिस स्वभाव को लेकर मैं पैदा हुआ हूं, मैंने ये देह धारण किए हैं, जिस समय इस देह की मृत्यु हो, मेरा स्वभाव सतोगुणी हो, ना तमोगुणी हो ना रजोगुणी हो, बल्कि वो सतोगुणी हो। सतोगुण उसमें डोमिनेट करे, प्रबल हो उसके अंदर। तो ऐसी हालत में यदि इस देह का त्याग होगा, तो अगला जन्म मुझको प्रभु उन परिस्थितियों में देंगे जहां मैं ईश्वर के मार्ग पर आसानी से चलने में समर्थ होऊंगा। मेरा स्वभाव ऐसा होगा, मेरा रुझान संसार के भोगों की तरफ होगा ही नहीं। जैसे महाराज जी का कहां रुझान था भोगों की तरफ। तो आप देखते हैं कि घरों में ही, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर नेचुरल वे में प्रभु के प्रति प्रेम होता है, नेचुरल वे में उनके अंदर सत्संग के प्रति रुचि होती है, नेचुरल वे में शास्त्रों के स्वाध्याय का उनको शौक होता है। इसीलिए जिसका ऐसा स्वभाव होगा, उसने तो प्रभु प्राप्ति करनी ही करनी है। लेकिन यह स्वभाव बनाना पड़ता है, इसकी भी कमाई करनी पड़ती है। जैसे आप पैसा कमाते हो ना, वैसे ही इसकी भी कमाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और पुरुषार्थ के लिए ही महाराज जी ने ये 5 नियम दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण। जो इन 5 नियमों को प्रोग्राम करके धारण करता है, इसके लिए सेक्रीफाइस करता है, उसका स्वभाव सत्वगुणी एक दिन बन ही जाता है, और उसी का मानव जीवन सफल होता है, क्योंकि वही प्रभु भक्ति करके संसार के दुखों से बच सकता है, संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।